ایک مومن کی زندگی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہدایت و تبلیغ کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے. اور سورہ مبارکہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے اور وہاں پر خداوند عالم اہل ایمان کی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے. ہدل للمتقین, یہ کتاب ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے. پہلی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ ہے اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے. الذین, جو لوگ, یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں, پہلی نشانی یہ. دوسری, یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. وہ یؤتون الزکات, زکات ادا کرتے ہیں. اور تیسری نشانی اللہ نے بیان کی, وہم بالآخرت ہم یوقنون, اور یہ لوگ آخرت پر بھی پورا پورا ایمان لانے والے ہیں. یہ تین نشانیاں بیان کی ہیں, اور ان تین نشانیوں میں سے جو آخری نشانی ہے جس کو آج کے عرائض کی روشنی میں آپ کی سوال کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان اور یقین کا کیا رابطہ اور رشتہ ہے. انسان کی زندگی میں یقین کس مرحلے پر ہے, اور قرآن کریم نے کس کس انداز سے انسان کے اس یقین کو اس کے سامنے پیش کیا ہے. ایسے لیکن آپ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب تک ہمیں کسی بات کا یقین نہ ہو, باور نہ ہو, تو ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے. انسان تشنا ہوتا ہے, جب تشنگی اس حد تک پہنچ جائے کہ اب اس کے لیے اس تشنگی کو برداشت کرنا, تحمل کرنا اس کے لیے مشکل کا سبب بن جائے, اب وہ انسان پانی کی تلاش کے لیے, پانی کے حصول کے لیے, پانی کو پینے کے لیے تگ و دو کرے گا. یہ بہت ہی سادی سی مثال ہے. اسی طریقے سے اس مثال کے ساتھ ساتھ زندگی کی دوسری مثالیں اٹھا لیجئے. انسان اس وقت تک کسی بھی چیز کے لیے کوشش نہیں کرتا جب تک کہ یقین کے مرحلے پہ نہیں پہنچ جائے. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو یقین ہو جاتا ہے, باور ہو جاتا ہے, اس کو علم ہو جاتا ہے. علم کو بھی ایک انداز سے یقین کے زمرے میں بیان کیا گیا ہے. جب ہم اصول کی بحث پڑھتے ہیں تو وہاں پر علم کو یقین کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے, یعنی علم جو یقین کے برابر ہو. مثلا بہت ہی سادی سی مثال دے کے گزر جاؤں تاکہ آپ جو مفاہیم ہیں ان کو آپ کے سماج کی نظر کر سکوں. آپ کے سامنے ایک مایع رکھا ہے, سیال مادہ, لکوڈ, اور آپ کو یقین ہے کہ یہ پانی ہے. آپ کو علم ہے یہ پانی ہے, آپ کو نالج ہے کہ یہ پانی ہے. آپ نے دیکھا, آپ کو یقین ہوا, آپ کو علم ہوا, آپ کو نالج ہوئی, آپ نے اس کو اٹھا کے تناول فرما لیا. کچھ دیر بعد پینے کے بعد بدلا, جناب یہ پانی نہیں تھا, کوئی مشروب تھا یا شراب تھی یا مسکرات میں سے کوئی مائع تھا. تو کیا روز قیامت اللہ اس بندے کا مؤاخذہ کرے گا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے علم پر عمل کیا ہے. توجہ رکھیے گا, اس نے اپنے علم پر, اپنے قطع پر, اس کو عربی زبان میں قطع کا ایک علم یعنی یقین یعنی قطع پر عمل کیا ہے. یہ قطع اردو والا قطع نہیں ہے جو معمولاً ادبیات میں استعمال ہوتا ہے, وہ قطع ہوتا ہے لیکن قاف تو عین قطع علم کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. آپ کے سامنے ایک مادہ ہے, آپ کو یقین تھا, آپ کو نالج تھی, آپ کو علم تھا کہ یہ پانی ہے, جائز ہے پینا, پی گئے. پینے کے بعد پتہ چلا کہ یہ کوئی اور مادہ مسکرات میں سے تھا, حرام تھا جس کا پینا. خدا مؤاخذہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے علم پر, آپ نے یقین پر, اپنے قطع پر, اپنی نالج پر حقیقت عمل کیا. اور پھر اگر اسی مثال کو دوسرے انداز سے دیکھا جائے, آپ کے سامنے ایک مایا رکھا ہے, ایک سیال مادہ, ایک لکوڈ ہے, آپ کو یقین ہے, اپنے علم کی روشنی میں, اپنی نالج کے تحت آپ نے دیکھا کہ جناب یہ مایا پانی نہیں ہے, یہ ان مایات میں سے نہیں کہ جس کا پینا حلال اور مباح ہو. اس کا پینا آپ کے علم کی روشنی میں آپ پر یہ منکشف ہو گیا, آپ پر یہ سامنے آ گیا یہ راز کہ جناب اس کا پینا حرام ہے. لیکن انسان پھر بھی جائے کہ جناب ٹھیک ہے, خدا رحمان و رحیم, معاف کرنے والا ہے, کیا ہوگا؟ روز قیامت اللہ پینے کے بعد پتا چلے
कि जनाब ये पानी था,
तब जो रखेगा इल्म था कि ये हराम है, पीने के बाद पता चला ये जायज सा पानी था, कोई और मशरूब था, अल्लाह ताला मुआखजा करेगा ऐसे इंसान का। क्यों? क्योंकि इसने अपने इल्म के खिलाफ अमल किया है। तवज्जो रखिएगा, ये बहुत सादी सी मिसाल है और इल्म उसूल में हम पढ़ते हैं। बताने का मकसद ये था कि इल्म और यकीन का एक गहरा ताल्लुक है, और अगर ये गहरा ताल्लुक इंसान की अमली जिंदगी में आ जाए तो इंसान की हयात का रंग और ढंग तब्दील हो जाएगा। हम बहुत सारी चीजों को जो इंफॉर्मेशन होती हैं, मालूमात होती हैं, या बाज़ औक़ात उनको हम मुगालते की बिना पर इल्म का दर्जा देते हैं, हम ये समझते हैं ये इल्म काफी है इंसान की निजात के लिए, लेकिन हकीकत में ऐसा इल्म, ऐसी मालूमात, ऐसी इंफॉर्मेशन इंसान के निजात के लिए काफी नहीं है। मैं चाहता था कि यकीन और इंसानी जिंदगी के तनाज़ुर को गुफ्तगू करूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि इल्म और यकीन के साथ अगर इस बहस को समाज की नजर किया जाए तो शायद ज्यादा मुस्मर समर हो सके। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्योंकि दरख्वास्त की गई है कि इतनी गुंजाइश छोड़ दी जाए मगरिब से पहले कि एक नोहा और फातिहा का इंतजाम हो सके, इंशाल्लाह वो भी अपने वक्त पर अंजाम पाएंगे होंगे। इंसान की जिंदगी में इल्म का बहुत बड़ा किरदार है और उस इल्म के साथ यकीन जुड़ा हुआ है। हमें बहुत सी चीजों का इल्म है लेकिन यकीन नहीं है, बहुत सी चीजों का इल्म है। ये इल्म जो हमें है, ये नॉलेज जो हमें है, ये इंफॉर्मेशन जो हमें है अज़ाने गिरामी, ये वो इल्म नहीं है कि जो यकीन तक हमें पहुंचा दे। तब जो रखिएगा, बहुत सी चीजों का हमें इल्म है, झूठ बोलना हराम है हमें इल्म है, लेकिन हमारी जिंदगी में अपने माशरे में हम देखते हैं कि झूठ है। हमें इल्म है कि अहले बैत को नाराज करना गुनाह है, लेकिन हम अपने अफाल और आमाल से अहले बैत को नाराज कर रहे होते हैं। अब बहुत से जो इल्म है, नमाज वाजिब है, लेकिन मुख्तलिफ बहानों से उसे छोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये जो इल्म है और जो यकीन जिसको कहा वो हम बिल आखरत हम यूकिनून, या आखरत पे ईमान और यकीन रखने वाले हैं, इस ये कैसे पहुंचा जाए। हम बहुत सी चीजों का इल्म रखते हैं या नॉलेज रखते हैं या इंफॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन यकीन के मरहले पे नहीं है। तो इस यकीन के मरहले तक कैसे पहुंचा जाए, क्या काम करें, तो तवज्जो रखिएगा, बहुत सी चीजों का इल्म। मसलन रिवायात में है कि अगर कोई शख्स, और ये वो बीमारी है जिसमें हमारा माशरा मुब्तला है, जहां बैठते हैं वहां किसी ना किसी की गीबत हो रही होती है। गीबत क्या है? गीबत की तारीफ बयान की गई है कि जो शख्स मौजूद ना हो उसका तज़किरा ऐसे किया जाए कि जब वो सुने तो उसे बुरा लगे, एक या आधी तारीफ है। और इसकी मुकम्मल तारीफ क्या है? जो चीज उसमें हो और उसे बयान की जाए, और अगर वो उसमें ना हो और आप उसको उसकी तरफ निस्बत दें तो ये झूठ भी होगा बोहतान भी होगा। अब हमारे यहां यकीन है अलगीबो अदाबो खिलाफ ना, गीबत जहन्नम के कुत्तों का सालन है। तवज्जो रखिएगा, मासूम फरमा रहे हैं गीबत करने वाला जहन्नम के कुत्तों का ताम बन जाएगा, गिज़ा बन जाएगा, ईंधन बन जाएगा। यकीन नहीं है, हमें इल्म है कि गीबत करना हराम है, लेकिन फिर भी गीबत कर रहे होते हैं। एक मोमना को यकीन है कि पर्दा वाजिब है, लेकिन माशरे की वजह से वो पर्दा नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि उसका इल्म उसे यकीन तक लेके नहीं आया। ये क्या वजह है कि हम इंफॉर्मेशन या मालूमात के दायरे और जुमरे में ही होके रह जाते हैं, और यकीन और इल्म से बढ़कर जो ईकान की मंजिल है उस पर नहीं आते हैं। यानी ये बहुत ही संजीदा बहस है और मैं आपकी तवज्जोहात का तालिब हूं। मजलिस आप सुनते रहते हैं, नुकात फ़ज़ाले आप सुनते रहते हैं, लेकिन चाहता हूं कि इस मरहूम के तवस्सुल से यहां से जब उठें तो हम एक यकीन की एक ऐसी सूरत लेके उठें कि जो हमारे अकायद में, हमारे अमल में, हमारे किरदार में जिसकी सूरत और सीरत नजर आए। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने बताया कि इल्म है लेकिन अमल नहीं है, और अमल नहीं है तो फिर यकीन भी नहीं है। भाई यकीन होगा तो फिर अमल होगा ना, जब यकीन ही नहीं है आपको तो फिर अमल कैसे होगा। यकीन के तीन दर्जात बयान किए गए हैं कुरान करीम में भी और रिवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम में भी। यकीन के तीन दर्जात हैं, एक इल्मुल यकीन होता है, एक ऐनुल यकीन होता है, एक हक्कुल यकीन होता है। तवज्जो रखिएगा, एक इल्मुल यकीन है यानी किसी बात का आपके कान तक आ जाना, ये इल्म आपको हासिल हो गई, ये नॉलेज हो गई। इसके बाद ये आपको अगले मरहले तक उस वक्त पहुंचाएगा, ये बुनियाद इल्म और यकीन आपको सआदत की मंजिल पर उस वक्त ले जाएगा कि जब आप इस इल्म को बरुए काल लातुए इस्तेफादा करें। लेकिन अगर अमली जिंदगी में इंसान इल्मुल यकीन को यानी जो इल्म हासिल हुआ है उसे इस्तेफादा न करे, इस कान से सुन उस कान से निकाल दे, उसकी जिंदगी में कोई तहरुक बेदारी और मूवमेंट नजर नहीं आएगी। मसलन मैं कहूं यहां पे दुनिया के बेहतरीन मशरूब है जो बाहर तकसीम हो रहा है, आपकी समाज से मेरी बात आपके जहन तक पहुंची और आपको ये इल्म हासिल हो गया कि दुनिया का बेहतरीन मशरूब जो है वो बाहर तकसीम हो रहा है। कब इंसान उस मशरूब को हासिल करने के लिए जाएगा? उस वक्त कि जब उसके अंदर एक प्यास मौजूद हो, यानी उसको यकीन हो कि बाहर जो मशरूब मौजूद है वो मेरी तृष्णगी के लिए है, ये इंसान जो है वो जाएगा। अब मुमकिन है बहुत से लोग ख्वाहिशात में जाएं, बहुत से लोग चेक करने के लिए जाएं कि आया सही है गलत है, उससे बहस नहीं है मेरी। ये क्या है? इल्मुल यकीन है, आपको इल्म हासिल हो गया। ऐनुल यकीन क्या है? आपने मुझे मौलाना ने कहा ठीक है हम बाहर जाके देखते हैं, बाहर जाए गए आप और आपने देखा कि स्टॉल पर जो है वो मशरूब तकसीम हो रहा है, ये ऐनुल यकीन है यानी आंख से देख लिया। तवज्जो रखिएगा, आंख से देखिए, जो इल्म सुना था, जो नॉलेज इंफॉर्मेशन आपको मिली थी उसके तहत आप बाहर गए और आपने आंखों से देख लिया, लेकिन फिर भी यकीन नहीं आना कि यह वाकई कोई मशरूब है या कोई रंगीन पानी और माया है। अब आपने उसे उठाया, पिया और पीने के बाद फरहत जहां महसूस हुई, फरहत महसूस हुई, लुत्फ अंदोज हुए, तृष्णगी मिटी, तो अब आपको हक्कुल यकीन हासिल हो गया। अब आपको हक्कुल यानी कहां से चले आप? इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन तक पहुंचे। ऐनुल यकीन तक पहुंचने के बाद भी अगर तगद्दो अमल स्ट्रगल कोशिश जद्दोजहद आपकी जिंदगी में नजर नहीं आएगी, वो दोनों मरहले आपको दर हकीकत ऐनुल यकीन तक नहीं पहुंचा सकते। ऐनुल यकीन तक पहुंचने का फार्मूला ही यही है कि जो इल्म तुम्हें मिल रहा है उसे अमल में लेके आते रहो, यही अमल तुम्हें ईमान की मंजिल पर ले जाएगा। बहुत सारे मुसलमान थे कि जिनको ये यकीन था कि रसूलुल्लाह जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जो कुछ बता रहे हैं सही बता रहे हैं। गदीर खुम के मैदान में भी लोग इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन में तकसीम हो गए थे। कोई समझता जो रसूल कह रहा है कहने दो, ठीक कह रहा है, लिहाजा उसने जो इल्मुल यकीन हासिल हुआ, मन कुंतुम मौला हो फहादा अली मौला की सदा जो कानों तक पहुंची थी, उसने कहा ये इल्म हासिल हो गया, रसूल जो कह रहा है कह रहा है। उसके बाद कुछ लोग इसमें इक्तफा नहीं करते, आगे बढ़े, ऐनुल यकीन के मंजिल पर आए, आगे बढ़े और अली के उस हुजरे में दाखिल हुए जिसको रसूलुल्लाह के हुक्म से नस्ब किया गया था, जहां अली मुर्तजा को अपना अम्मा पहनाकर रसूलुल्लाह ने हजरत अली की बायत ली थी, ये अब ऐनुल यकीन में तब्दील हो गया। और अब जो है इससे कर जिसने आली के हाथ पर बायत करी वो हक्कुल यकीन की मंजिल में आ गया। ये तीन मंजिलें हैं। अब दुनिया में भी इसी तरह होता है। अब आप दूर से सुना के जनाब शाह नजफ मवारका में मजलिस से मजलिस की आवाज आ रही है, ये क्या हुआ? ऐनुल, ये आपको इल्मुल यकीन हुआ। उसके बाद जब आप अंदर आए और नाराज के बैठ के हाँ वाकई मजलिस हो रही है, ये आपको ऐनुल यकीन हो गया, और जब फजाई के नुकात दर हकीकत आपके ईमान को जिला देने लगे और जबान से या अली और या हुसैन के नारे निकलने लगे, तो ये दर हकीकत आपने अपने आप को मजलिस के दायरे में शरीक होकर हक्कुल यकीन को इख्तियार कर लिया। और हर इंसान की यही सूरत हाल है, जिंदगी के तमाम मुआमलात में इंसान इसी तरीके से अपने ईमान को एक अपग्रेड ईमान की सूरत में ले जाता है। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसा लेकर अभी दो किस्म की इस्तलाहें इस्तेमाल की गई हैं यकीन के लिए, एक खुद यकीन का लफ्ज है और एक ईकान का लफ्ज है, यूकिनून जिसे कहा गया है। तवज्जो रखिएगा, दो किस्म की इस्तलाहें इस्तेमाल किया कुरान ने, एक यकीन का लफ्ज है जो हमारे मशहूर है, एक है ईकान वकाना से है। यकीन दर हकीकत उस इल्म को अपने फिक्र और जमीर के जरिए से अपने जहन और कल्ब पे तारी करने का नाम है, और उस पे जम जाना, उस पे इस्तकामत दिखाना, उस पे डटे रहकर आखिर वक्त तक अपनी जिंदगी को उसके उसूलों के मुताबिक कारबंद रखना, इसको ईकान कहा जाता है। ये वजह है छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल ईमान अफजल मिन अल इस्लाम, ईमान इस्लाम से अफजल है। तवज्जो रखिएगा, इस्लाम ले आए नहीं, उससे बढ़कर ईमान लाना है। फिर इमाम का ईमान दर हकीकत इंसान की वो हालत है कि जब वो पूरी जिंदगी अल्लाह और मोहम्मद आले मोहम्मद के कवानीन के तहत जिंदगी गुजारने का अज़्म करता है और इसी पे कारबंद रहता है, और इससे बढ़कर कोई और दलील और कोई और मंजिल मौजूद नहीं है। यकीन की मंजिल, यकीन होता है इंसान को, मम्मा ताला हुब आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत मर जाए वो शहीद है। ये यकीन नहीं है सिर्फ, ये इल्मुल यकीन नहीं है, ये ऐनुल यकीन नहीं है, ये हक्कुल यकीन की मंजिल है कि जहां पर मोमिन को ये बावर कराया जा रहा है, यकीन दिलाया जा रहा है, शक और तर्दीद की बुनियादों को मुदज़लज़ल करके गिराकर यकीन की इमारत तामीर की जा रही है कि जो भी हुब अहले बैत रखेगा और वो अपने फर्श पर ही क्यों ना मरे, कब्रिस्तान तक पहुंचने से पहले उसे शहदा के साथ महशूर किया जाएगा। क्यों ये हक़ुल यकीन है? इसलिए कि तुम दुनिया में जिनका नाम लेकर अपनी जिंदगी को उनकी तालीमात के मुताबिक गुजारते रहे, तुम सारी जिंदगी या हुसैन करते रहे, तुम सारी जिंदगी अपने गमों को भूलकर उनके गमों का अहिया करते रहे, तुम अपनी खुशियों में पहले उनकी खुशियों का जिक्र करके उनको दावत देते रहे, तो अब यकीन रखो कि अब जब मुलाकात का वक्त आएगा तो सबसे पहले वही आएगा कि जिसकी विलायत की गवाही दुनिया में तुम देते रहे हो। इंसान को यकीन हो, ये ऐनुल यकीन है, ये हक्कुल यकीन है, ये यकीन से बढ़कर जो हकीकी मेराज है या इल्म की और यकीन की वो है, इंसान को यकीन हो जाए। और यही हर इंसान मोमिन की आरज़ू होती है, वो जो नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, हज कर रहा है, ज़कात दे रहा है, जो कुछ भी अमल बचा जा रहा है, ये सब उसकी निजात के लिए है, ये सब उसकी निजात के लिए। और वअबुद रब्बक हत्ता यातीकल यकीन, अपने रब की इतनी इबादत करो कि तुम्हें यकीन हासिल हो जाए, तुम यकीन के मरहले तक पहुंच जाओ। तवज्जो रखिएगा, यानी जब इंसान यकीन, भाई ऐ अल्लाह मैं दुनिया में पहले यकीन हासिल करूं फिर बाद में तेरी इबादत करूं, खुदा का जवाब होगा यकीन करोगे मुझ पर, मेरी रहमत पर, मेरे अजाब पर, मेरे सवाब पर, मेरी जन्नत पर, मेरे जहन्नम पर, अन्नार हक्कुन वल बाअथ हक्कुन वल मीज़ान हक्कुन। ये हक क्या है? ये हक, ये इल्मुल यकीन नहीं है, ऐनुल यकीन नहीं, ये हक्कुल यकीन है, ये जो 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 आप तलकीन में पढ़ते हैं और मुर्दे को पढ़ाते हैं, ये हक्कुल यकीन की बातें हैं, ये इल्मुल यकीन की बातें नहीं हैं। इल्मुल यकीन तो हम जैसे जिंदों के लिए है कि जो दुनिया में चलते फिरते उनकी तासीर पैरवी का दम भरते रहें, उनकी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते रहें। अब जब उस यकीन के मुताबिक इंसान उस मंजिल पे पहुंच गया कि वअबुद रब्बका हत्ता यातिकल यकीन, अपने रब की इतनी ऐसी इबादत कर, इतनी इबादत कर के तुझे यकीन हासिल हो जाए। अब जब इंसान यकीन की मंजिल पे पहुंच गया तो अन्नन्नार हक्कुन वल बाद हक्कुन वल मीजान हक्कुन वतताइरुल कुतुब हक्कुन, ये दर हकीकत इल्मुल यकीन नहीं है, ये यकीन नहीं है, यह हक्कुल यकीन है कि तू जो जिंदगी में करता रहा है उसकी पहली मंजिल अली की मुलाकात है। हक्कुल यकीन है, और इस हक्कुल यकीन को इख्तियार करना ही मोमिन की जीनत है। मोमिन सिर्फ इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन पे इक्तफा नहीं करता, मोमिन हक्कुल यकीन पर दर हकीकत उसे हासिल करना चाहता है। और यही वजह है कि मोमिनों का जो अमीर है, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं लव कुश बलवता मजदत तो यकीना, अगर तमाम पर्दे हटा दिए जाएं तो अली की यकीन में इजाफा नहीं होगा। ये वो हक्कुल यकीन है। क्यों वाला? दो किस्म के यकीन है अलग-अलग के लिए, एक अकाइद का यकीन है और अकायद के दरजात हैं और एक अमल के जरिए से दरजात हैं। एक यकीन अकायद में है कि जिसके लिए मौला फरमा रहे हैं लव को शफल खता अली के निगाहों के सामने से अगर कोई पर्दे हटा भी दे, तवज्जो रखिएगा, लव को शफा, को शफा मजहूल है, यानी अगर कोई हटा दे, अगर किसी में सकत हो कि अली के सामने पर्दे पड़े हुए जो हैं उनको हटा दे तो अली के यकीन में इजाफा नहीं होने वाला। क्यों इजाफा होने वाला नहीं? ये अकायद का यकीन है, इसलिए।